ओम शांति। हम सबके बीच हम सबकी परम स्नेही आदरणीय हेमलता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम सब उनका बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। 1976 में संपूर्ण जीवन समर्पित कर बेहद बाबा की सेवा में लग गई। आप एक प्रभावी एवं प्रेरक वक्ता हैं। नारी शक्ति को सबल बनाने, अनेक महिला अभियान एवं नैतिक आंतरिक सशक्तिकरण का सफल आयोजन आपने किया है। इंदौर में संचालित शक्ति निकेतन छात्रावास आपके मार्गदर्शन में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी के बिजनेस विंग की क्षेत्रीय संयोजिका हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं में अपने प्रभावशाली वक्तव्य से जन समूह में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आपने संबोधित किया है। आपके द्वारा समाज में अतुलनीय सहयोग सकारात्मक कार्यों के लिए आपको इंदौरियन संस्था द्वारा इंदौरी रत्न, महिलाओं में जागृति लाने हेतु लायंस क्लब के द्वारा विशेष अवार्ड तथा पर्यावरण जागृति वृक्षारोपण के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में पर्यावरण मित्र अवार्ड प्राप्त हुआ है। वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा समाज में विशिष्ट योगदान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं राजस्थान की अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। 2022 में इंदौर गौरव उत्सव में आपको सशक्त महिला सम्मान से नवाजा गया। आप इंदौर जोन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के सीमावर्ती सेवा केंद्रों की क्षेत्रीय निदेशिका है। आप आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और आदरणीय कमला दीदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आज पूरे इंदौर जोन को विकास की धारा में बहा रहे हैं। चारों ओर विकास से विकास नजर आ रहा है। उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे ही निकलता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे प्रकाशित करने वाली आदरणीय हेमलता दीदी जी का जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करते हैं। और आज दीदी जी की क्लास का विषय है वर्तमान समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ। आदरणीय दीदी,
ओम शांति। आज का जैसा विषय है वर्तमान समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ, तो हम सब वर्तमान समय को तो जानते ही हैं। आज तो बाबा ने भी मुरली में वर्तमान समय के लिए बताया कि सारी सृष्टि कैसे तमो प्रधान हो चुकी है। क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है वो तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बाहर की दुनिया में भौतिक और वैज्ञानिक विकास तो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया है और उसके आधार पर बाहरी दुनिया बहुत ही आकर्षक, सुंदर, आरामदेह, सुविधाजनक बन गई है। ऐसे समय पर भी चारों तरफ माया अपना साम्राज्य फैलाती जा रही है। माया के सैनिक कहो, विकार कहो और प्रकृति के पांच तत्व कहो, वो सारे ही अपना तांडव नृत्य आज चारों तरफ अपनी अपनी रीति से कर रहे हैं, और इसीलिए हम देखते हैं चारों तरफ कहीं युद्ध हो रहे हैं, तो कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं समुद्री तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहां तक कि मानव ने मशीनी मानव बना दिया है और उस मानव से मानव जैसा कार्य ले रहा है, और हर चीज ऑटोमेटिक तक पहुंच रही है, वाइब्रेशन तक पहुंच रही है। तो ये सब विकास तो हमारा सतयुग के समीप के नजारे हमें दिखा रहा है कि सतयुग में कैसे इससे भी अच्छा सारा ऑटोमेटिक कार्य कैसे होगा, वो साइंस वहां की कैसी होगी, वो एक छोटा सा उदाहरण हमको अभी ही साइंस दिखा रहा है। लेकिन बाहरी दुनिया में जितना विकास है उतना ही और क्या बढ़ रहा है, दुख, अशांति, परेशानी, समस्याएं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उन परिस्थितियों का सामना तो हरेक को करना ही होगा। तो आज एक तरफ बाहरी दुनिया हमें समय की ओर इशारा दे रही है, जो बाबा ने बातें हमें मुरलियों में कही हुई है कि बाद में कैसा कैसा होगा, वो सब अभी हमें प्रत्यक्ष नजारे दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम अपने यज्ञ की स्थिति को देखें, तो आज शुरू की यज्ञ की वो गोल्डन एज जो प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा मम्मा के द्वारा बच्चों की पालना की, कितना अच्छे से उनका श्रृंगार किया, उसके बाद भी अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चला, दादियों ने बच्चों की इतनी पालना की, और आज आज तो दादियां भी सब वतन में पहुंच चुकी हैं। सिर्फ एक ही दादी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हमारे सन्मुख है, और वो भी अन्य दादियों की तरह ही, भले ही हमारे सन्मुख है, साकार तन में है, लेकिन कर्मातीत स्थिति जैसी ही उनकी स्थिति है। यहां रहते भी वो संपूर्ण रीति से फरिश्ता कर्मातीत स्थिति में है, और चार वरिष्ठ भाई, उनमें से भी हमारे पास अभी केवल एक वरिष्ठ मुख्य भाई बचे हैं। और धीरे धीरे दादियां तो ठीक है, लेकिन दीदियां भी वतन की ओर अग्रसर होती जा रही हैं। ये सब हमें क्या इशारा दे रहे हैं कि यज्ञ अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर इस समय देखें तो बाप दादा भले यूं गुलजार दादी के तन से अब नहीं आ रहे, लेकिन पास्ट की मुरलियों को सुनते हैं जब रिवाइज कोर्स में डेट वाइज जैसे बाबा का सीजन होता है उसमें, या फिर जो संदेश आते हैं, उन संदेशों के थ्रू भी बाबा अभी हमें वतन की ओर चलने का इशारा ही कर रहे हैं। बाबा वतन में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे फरिश्ता बने, कर्मातीत बने, ब्रह्मा बाप समान बने, वतन में आए और हम सब मिल करके घर को चले। वापस घर ले चलने के लिए बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाया किस लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, पर देवता तो हम भविष्य में बनेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ अभी कर रहा है, लेकिन पहले क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, या कहें कर्मातीत बनना है। तो सबसे पहली बात तो समय अनुसार अगर हमें पुरुषार्थ तीव्र करना है तो पहले तो हमें अपना ये लक्ष्य पक्का कर लेना चाहिए कि मुझे कर्मातीत फरिश्ता बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य पक्का मजबूत दृढ़ता वाला रखना है कि मुझे वर्तमान में कर्मातीत फरिश्ता बनना ही है, पुरुषार्थ करना ही है, होना ही है। बस ये अपने अंदर में संकल्प में दृढ़ता लानी है। दूसरी बात, जब तीव्र पुरुषार्थ की बात आती है तो बात आती है स्व परिवर्तन की। ऐसा फरिश्ता बनना है तो मुझे क्या परिवर्तन करना है? तो जहां परिवर्तन की बात आती है तो अभी तक हमारे अंदर जो भी पुराने स्वभाव संस्कार थे उन संस्कारों का परिवर्तन करना है। उन आसुरी शूद्रता के स्वभाव संस्कार जो भी अंश वंश रहा हुआ हो उन सबको बदलकर हमें ऐसा सुंदर दैवी संसार बनाना है, दैवी संस्कार लाने हैं, संस्कार परिवर्तन कर और सुंदर दैवी संसार हमें बनाना है। अब बनाना है, बनना है, लक्ष्य भी हमने रख लिया, लेकिन क्या केवल लक्ष्य रखने से हम बन जाएंगे? जहां स्व परिवर्तन की बात आती है और तीव्र पुरुषार्थ की बात हम करते हैं तो बाबा ने बहुत सहज रीति से परिभाषा दी है। तीव्र पुरुषार्थ बना क्या, क्या परिभाषा दी है बाबा ने? बाबा ने अभी अभी चली हुई एक अव्यक्त वाणी में बताया था तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, फास्ट परिवर्तन माना क्या। तो जैसे कागज पर बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाने में कितना समय लगा? सेकंड से भी कम। इतना फास्ट हम अपने संस्कारों में परिवर्तन करें उसे कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। माना सोचा और किया, ऐसे नहीं सोचते रह गए करना है करना है और कर ही ना पाए, करने जाए परिस्थितियां आई ठंडे हो जाए, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं। तो बाबा हमें कहते पुरुषार्थ तीव्र कब है, कितना समय लगे परिवर्तन करने में, कोई भी कमी अगर मेरे अंदर मुझे दिखाई देती है तो उसे परिवर्तन करने में मुझे लंबा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाबा तो समय का इशारा दे ही रहे हैं। समय कम है और अगर हम लास्ट में आए हैं और फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट में जाना है तो हमें समय पर पूरा ध्यान देना ही होगा, समय को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए पुरुषार्थ तीव्र तब होगा। अब जब हम बात करते हैं तीव्र पुरुषार्थ की तो हमें पहले तो अपने आप को समझना होगा कि मुझे अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है। जब तक मुझे यही नहीं समझ में आएगा तब तक मैं क्या परिवर्तन करूंगी। तो पहले अपने आप को समझने के लिए अंतर्मुखी होना होगा। अंतर्मुखी होना माना यूं तो सब जानते, किसको कहेंगे अंतर्मुखी होना? जो बाहर की दुनिया की तरफ हमारी कर्मेंद्रियां हैं, बाह्य मुखी है, संसार की हद की बातों में लगी हुई है, कान आंखें मुख हाथ पांव सभी, यहां तक कि मन बुद्धि संस्कार भी, जो अभी तक बाह्य मुखी है, बाहरी आकर्षणों के अंदर बाह्य इन इंद्रियों के विषयों के रसों का आनंद लेने में मगन है, उसमें उन्हें खुशी होती है, या चलो उससे हमने कम भी किया लेकिन कभी न कभी ये इंद्रियां उन इंद्रिय रसों के आकर्षण की ओर खिंच जाती है, उन्हें वो रस अच्छा लगता है, अभी भी उस तरफ आकर्षण होता है। तो हमें अपने आप को देखना होगा, समझना होगा। वो कब समझ सकेंगे? जितना हमने पहले बाबा को समझा होगा, अपने आप को अनुभव किया होगा बाबा के अनुसार और बाबा की दी हुई शिक्षाओं अनुसार, ज्ञान को पूरा समझकर फिर उससे अपनी तुलना करेंगे। बाबा ने हमें क्या और कैसा बनने के लिए शिक्षाएं दी है, हर बात में, संकल्प बोल कर्म व्यवहार संबंध संपर्क, हर बात में, दृष्टि वृत्ति कृति, हर बात को जब हम सामने लाएंगे, बाबा की बातों को, ज्ञान को सामने रखते हुए अपने साथ कंपेयर करेंगे, तब हमें अपने आप को समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या है, क्या करना है और क्या नहीं चाहिए, किसको खत्म करना है। और जब ये समझ में आ जाए उसके बाद, जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो आप सबको पता है बाबा क्या करते थे, अपनी इंद्रियों की दरबार लगाया करते थे। तो रोज रात को अपनी इंद्रियों की दरबार लगाए, स्वराज अधिकारी बनकर के, राजा बनकर के अपनी इंद्रियों को देखें, सूक्ष्म इंद्रियों पर भी गौर करें, चेक करें वो क्या कर रही है, सारे दिन भर का हिसाब निकालें, चार्ट चेक करें, तब पर वो तब हो सकता है जब आप पहले अपने आप को अंतर्मुखी करेंगे। अगर आपकी इंद्रियां बाह्य मुखी हैं तो आप अंदर की तरफ झांक करके अपने आप को देख ही नहीं सकेंगे, आप अपने आप को चेक ही नहीं कर सकेंगे और अपने आप को कैसा समझते रहेंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बहुत अच्छा मेरा पुरुषार्थ है, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सेवा करती हूँ या करता हूँ, माना अपने आप में हम बहुत अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने आप की कमियों का हमें पता ही नहीं चलता है। तो पहले अंतर्मुखी होकर के अपने आप को समझना, देखना, चेक करना, तब फिर चेंज की बात आती है, तब परिवर्तन शुरू होगा। और जब हम चेक करते हैं तो समझ में आता है सबसे बड़ी बात हमारे अंदर कौन सी है जो हमें विघ्न स्वरूप बन रही है, वो है देह अभिमान। सबसे बड़ा विघ्न है, पुरुषार्थ को जो तीव्र नहीं बनने देता, वो है हमारा देह अभिमान, और इसलिए इसको खत्म करने के लिए, इसको और हम समझेंगे, उसको खत्म करने के लिए दूसरा पुरुषार्थ चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति। पहले लक्ष्य बनाए, फिर अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखे, समझे, चेक करे। तीसरा चाहिए कौन सी बात, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर आपको घर चलने का गेट खोलना है तो गेट खोलने की चाबी है कौन सी, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो वैराग्य वृत्ति क्या है, उसको बाबा ने शब्दों में डिफाइन किया कि देह अभिमान को खत्म करना, त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, और दूसरी बात वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय को खत्म करना, समर्थ बनना, ये है बेहद का वैराग्य। ये बाबा ने अभी अभी कुछ समय पहले चलाई हुई मुरली में बेहद की वैराग्य वृत्ति को परिभाषित किया। यूं तो बहुत सारी बातें हैं उसके अंतर्गत, लेकिन अब बड़ा विघन है देह अभिमान, और देह अभिमान को खत्म करना, चलते फिरते हर कार्य करते भी देही अभिमानी बनना, वो कैसे होगा, और कैसे वेस्ट थॉट और वेस्ट समय को त्यागना, खत्म करना और उसको समर्थ बनाना। ये कर लिया तो आपकी बेहद की वैराग्य वृत्ति आपके अंदर आ सकती है। तो बाबा ने मैंपन को डिफाइन किया देह अभिमान को, कि एक तो होता है मोटा मैं, वो तो हम सब जानते हैं ना, कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है। तो मैं अभी तक अपने आप को शरीर समझते थे, और शरीर के संबंध, शरीर की इंद्रियां, शरीर के पदार्थ, शरीर की दुनिया में हमारा आकर्षण था, वो भी मैं और मेरा, हद का मैं और मेरा, वो है कॉमन मैं और मेरा। लेकिन बाबा आज बात कर रहे हैं कि मोटा मैं तो उसमें भी कईयों ने अभी पूरा नहीं जीता, लेकिन महीन मैं, जिसको बाबा रॉयल मैं भी कहते हैं, तो वो महीन मैं और रॉयल मैं वो क्या है, बाबा उसको डिफाइन करते कि कई बार परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर बाबा का बनने के बाद कई विशेषताएं, योग्यताएं भर दी जाती है। बाबा से वरदान रूप में हमारे अंदर कुछ प्राप्तियां होती हैं, जैसे हमारी बुद्धि का वरदान हमको मिल जाता है। हमारी बुद्धि बहुत अच्छी प्लानिंग करती है, बहुत अच्छा निर्णय लेती है, या बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र हो जाती है, दिव्य बुद्धि मिल गई है, या सेवा का वरदान मिल गया, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, कई प्रकार की विशेषताएं हैं। उस प्रभु प्रसाद को, प्रभु द्वारा प्राप्त देन को हम क्या समझ लेते, मेरी समझ लेते, और अगर मैंने कोई सेवा अच्छी की तो उसका मुझे मैपन आ जाता है कि मैं इतनी अच्छी सेवा की, मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा निकाला, मैंने ये किया, बहुत सारी बातें हैं, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विशेषता है। तो उस अपना मैपन, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी सेवाओं का, हर बात का हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, जिसको बाबा कहते हैं महीन मैं या महीन देह अभिमान उसको कह सकते हैं। और कैसे पता चले कि आपके अंदर अभिमान है? क्योंकि मैं शब्द भी दो प्रकार से होता है ना। एक मैं शब्द अगर उसको हम स्वमान के रूप में लेवे तो वो आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, खुशी देने वाला होगा, और अगर उसको बेअभिमान के रूप में लेंगे तो वो आपको क्या करेगा, गिराने वाला होगा, दिल शिकस्त करने वाला होगा, उमंग उत्साह कम करने वाला होगा। और जब उमंग उत्साह कम हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते, कुछ करना चाहते हैं और नहीं हो पाता है, तो जो आप मैं कहते हैं वो मैं कैसा होता है, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे लिए तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो वो मैं कौन सा हुआ? कमजोर बनाने वाला, दिल शिकस्त करने वाला, वो भी तो देह अभिमानी है ना, गिराने वाला मैं है। और एक मैं अभिमान चढ़ाने वाला अपनी योग्यताओं का, लेकिन बाबा ये दोनों ही मैं नहीं चाहते, तो कौन सा मैं चाहते हैं? स्वमान वाला, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, वो मुझे नशा चढ़ा रहे, न कि ये इन बातों का नशा मुझे चढ़ा रहे। तो बाबा हमें सिखलाते, बच्चे कैसे पता चले कि आपके अंदर अभिमान है, उसकी निशानी क्या है? जिसके अंदर अभिमान होगा उसको अगर कोई छोटी सी भी करेक्शन देगा ना, तो वो तो समझता ही नहीं कि मैं कहीं गलत हूं, वो तो अपने आप को हमेशा ठीक ही समझता है और बहुत अच्छा मानता है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी समझता है, इसलिए अगर उसको छोटी सी भी कहीं करेक्शन दी जाती है या उसे कहा जाता है तुम थोड़ा नम्र बनो, तुम ये परिवर्तन करो, तुम्हें थोड़ा सा ये चेंज करना चाहिए, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो सुन नहीं सकेगा, उसको ऐसा फील होगा जैसे मेरी इंसल्ट कर दी। तो अभिमान होगा तो उसकी निशानी अपमान की फीलिंग उसको जरूर जरूर आएगी, और जहां अपमान की फीलिंग आएगी तो उसके साथ और क्या आएगा? अपमान की फीलिंग आएगी तो और क्या आएगा? क्रोध। क्रोध भी एक पंच महाभूतों में से एक है ना, तो क्रोध भी जरूर आएगा। और जब क्रोध आएगा तो कहते क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य से राइट कर्म होगा या रॉन्ग कर्म होगा, उसकी निर्णय शक्ति ही खत्म हो जाती है, रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग समझ लेता है, और इसलिए उससे फिर उल्टे कार्य होंगे, जो नहीं करना चाहिए वो होगा। तो स्व परिवर्तन करना माना जो भी अयथार्थ है यथार्थ माना जो राइट है, जो श्रीमत के अनुसार है, जो करना चाहिए उसे कहते हैं यथार्थ। और जो अयथार्थ है, जो राइट नहीं है, जो रॉन्ग है, जो श्रीमत के विपरीत है, जो विकारों के वश होकर होगा, जो देह अभिमान के वश होगा, ऐसी बातें अगर हम अभी भी करते हैं उसको हमें परिवर्तन करना है, अयथार्थ को खत्म करना है, परिवर्तन करना है। तो पंच महाभूत केवल नहीं है, केवल पंच महाभूतों को जीत लेना ही पवित्रता नहीं है, है क्या? कई तो केवल ब्रह्मचर्य को पालन करना ही पवित्रता मान लेते, पर बाबा ने तो इसकी परिभाषा बहुत सूक्ष्म बताई है। पांच विकार, पंच महाभूत, उसके बाल बच्चे, उनके अंश वंश, सबको स्वप्न संकल्प मात्र भी जीतना, तब आप ये सब तो मैं के अंदर ही आ गए ना। देह अभिमान का मैं है तो ये सब भी साथ साथ होंगे ही। अगर आपने देह अभिमान का मैं जीता, चाहे वो मोटा रूप हो, चाहे महीन रूप हो, जिसे आप सूक्ष्म रूप कहो या रॉयल रूप करो, जिस भी रूप में मैं देह अभिमान आपके अंदर वार कर रहा है, मैं और मेरापन है, तो बेहद के वैरागी आप होंगे ही नहीं। आपका राग इस दुनिया में, देह में, देह के संबंधियों में, देह की दुनिया के पदार्थों में, वस्तुओं में निश्चित रूप से जाएगा ही। तो जब तक अंदर से वैराग्य वृत्ति नहीं आई, तब तक आपके अंदर परिवर्तन शुरू नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थी भी आप नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा ने, हीरो का इतना धंधा था, उसको वैराग कब आया? हीरे कांच के टुकड़े कब दिखने लगे? विनाश का साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने कह दिया, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, बादशाही सारी दे दी पार्टनर को, और हुआ रेल का राय। तो मुख्य बात, जरूरी नहीं है कि उनको साक्षात्कार हुआ, हमें तो साक्षात्कार हुआ नहीं, तो हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति कैसे आएगी? नहीं, हमें बाबा ने दिव्य चक्षु तो दिया है ना, दिव्य दृष्टि नहीं है लेकिन ज्ञान का दिव्य चक्षु तो दिया है, उससे हमको तीसरे नेत्र से तो दिखाया है ना, दुनिया विनाश की ओर जा रही है, विनाश अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उस समय तो ये अस्त्र शस्त्र बने भी नहीं थे, बॉम्ब्स मिसाइल, जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, आज तो वो सन्मुख हम देख रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वो युद्ध में वो सब चीजें आज यूज हो रही है। तो विनाश का जब तक हमें पूरा निश्चय नहीं, और आने वाली नई दुनिया का निश्चय नहीं कि इसके बाद वो नई दुनिया आनी ही है और मुझे उस दुनिया में जाना ही है, जब तक ये अंदर में पूरा पक्का निश्चय नहीं, अंदर वृत्ति में वो बात चली जाए, एक है दिमाग तक होना। दिमाग में तो हमने 7 दिन के अंदर समझ लिया, कोर्स किया, नए नए आए तब से पता है, कह रहे हैं विनाश हो रहा है, लेकिन क्या ये बात मेरे अंदर तक चली गई है? दिल में लग गई है कि विनाश सामने खड़ा है और मुझे ऐसा बनना है, समय कम है। जब तक वो मेरे दिल में नहीं लगती, अंदर से वृत्ति में नहीं जाती, मुझे ये पक्का निश्चय नहीं हो जाता कि कि अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा रोज हमें मुरली में कहता है विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, तुम्हारे लिए मैं परिस्थान स्थापन कर रहा हूँ, इस दुनिया को स्वर्गिक दुनिया बना रहा हूँ, तुम्हें मैं विश्व का मालिक विश्व महाराजा महारानी बनाने आया हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाने आया हूँ, बाबा रोज कह रहा है। लेकिन क्या मुझे निश्चय हो रहा है कि मैं ऐसा बन रही हूँ? मैंने अपने अंदर उस जैसा कोई परिवर्तन किया है? परिवर्तन होगा ही तब जब मेरे अंदर इस बात का पहले निश्चय होगा, तब मेरे अंदर बेहद का वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य वृत्ति होगी तो मेरी बुद्धि हद के मैं और मेरेपन से निकलती जाएगी, मेरा आंतरिक रूप से। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, अगर थोड़ा भी कहीं आंतरिक राग है चेक करो, अगर राग है तो उसको कहेंगे मोह की बंदरी। तो राग है तो बेहद का वैराग आ ही नहीं सकता, चेक करना है कहां भी आंतरिक। बाहर से तो आपको लगता है मेरा कहीं राग नहीं है, मेरा कहीं लगाव नहीं है, मेरा कहीं झुकाव नहीं है, मेरी बुद्धि में तो एक बाबा ही है। लेकिन अंदर में जाके, तब हमने कहा अंतर्मुखी बनकर पहले अपने को देखना होगा, समझना होगा, चेक करना होगा, अंदर तक जाकर आंतरिक रगों को देखो, कहां कहां मेरी रग फंसी हुई है, कौन कौन सी रगे हैं, मोह की रगे, लोभ की रगे, अहंकार की है, काम विकार की है, कौन सी रग है। आंतरिक रगों को अगर मैंने साफ नहीं किया, राग मेरा है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बेहद का वैराग एक तो देह अभिमान का मैं खत्म करना, मैं की बलि देना, और बलि भी कैसी अच्छी होती है, झटके की बलि। हम मरे भी सही, बाबा के ऊपर मैं की बलि भी चढ़ाए, लेकिन सोच सोच कर हाय हाय करके, हाय मरना पड़ेगा क्या, हाय ये छोड़ना पड़ेगा क्या, इससे भी बुद्धि निकालनी पड़ेगी क्या, क्या ये भी नहीं कर सकते, क्या ये भी नहीं, इसमें भी बुद्धि नहीं, इस भी आकर्षण से, रवि तो बड़ा आकर्षण सभी को ले बैठा है, दुनिया को तो ले ही बैठा है, ब्राह्मणों को भी छोटा सा मोबाइल, वो भी क्या है, उसमें भी राग भरा हुआ है, बुद्धि उसमें भी फंसी हुई है। काम लायक उसको यूज करना, सेवा के प्रति यूज करना अलग चीज है, लेकिन सारा समय उसमें ही बुद्धि लगी रहे, उसमें ही हम फंसे रहे, तो दुनिया वालों में और हम ब्राह्मणों में क्या फर्क है। तो अभी वो भी देह अभिमान की ही बातों में अगर हम ज्यादा उसमें फालतू चीजों में जाते हैं, तो वो भी क्या है, मैं और मेरे का हद की तो बातें हैं, वो भी बेहद का वैराग नहीं है। इसलिए हमें पहले तो बेहद का वैरागी बनना है, तो उसमें पहली बात जो बाबा ने कही, दे अभिमान, इसको जीतने के लिए चलते फिरते देही अभिमानी, देही अभिमानी बनना पहला पाठ पहले दिन आपको बताया गया, और आज तक भी वो पाठ, बाबा तो कई बार कहते अंत का भी पाठ वही है, पहला पेपर वही आना है, अंत समय में भी सेकंड में देह से न्यारे होना हमको नहीं आया तो हम उन परिस्थितियों में फेल हो जाएंगे। इसलिए बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए और स्वमान में टिकने का अभ्यास चाहिए। तो दूसरी बात जो बाबा ने कही, वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय, तो उसका भी हम देखते हैं कि वेस्ट संकल्प और जितना वेस्ट संकल्प आता है वो सब किस बात में आता है, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे प्रश्न हम लगा देते हैं। कई बातें आती हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, एक तो क्यों, क्या, कैसे, दूसरा चाहिए, चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक तो चाहिए, चाहिए, और दूसरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसने क्यों किया। लेकिन ये सब प्रश्न हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं, वेस्ट थॉट। चाहिए चाहिए भी अगर पूरा नहीं हुआ तो वो भी क्या करेगा, वेस्ट थॉट पैदा करेगा। और जितना आपकी चाहना पूरी नहीं हुई, कोई ना कोई अपेक्षाएं, इच्छाएं बाकी रह गई, चाहे वो पुरुषार्थ की ही इच्छाएं क्यों न हो, चाहे कोई प्राप्ति की इच्छाएं क्यों न हो, लेकिन बिना मेहनत के तो कोई भी प्राप्ति होगी नहीं। और अगर आपने केवल चाहना रखी और नहीं हुआ तो आपके अंदर चलने वाले वेस्ट थॉट आपका दिमाग भी भारी करेंगे, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, क्योंकि संकल्प को शक्ति कहा जाता है। और अगर हमारे बहुत ज्यादा संकल्प हमने किसी बात के लिए, नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स बहुत ज्यादा चला लिए और हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो गई, तो वीकनेस आ जाती है, डिप्रेशन में कई बार व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि एनर्जी हमारी सारी खत्म कर देते हैं। और उसके अंदर जो इतना लंबे समय तक अगर हम वेस्ट थॉट चलाते रहते तो टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ। तो केवल संकल्प वेस्ट नहीं किए हमने, और कितना नुकसान कर लिया, दिमाग भी भारी कर लिया, एनर्जी भी वेस्ट कर दी, टाइम भी वेस्ट कर दिया, और बाबा की याद भी नहीं रही तो शक्ति भी हमको मिल नहीं पाई। इसलिए इन सब बातों से हमारा दिमाग बहुत भारी हो जाता है और हमें बाबा की याद बुद्धि से माइनस हो जाती है, और उस समय ज्ञान की बातें भी अच्छी नहीं लगती, कोई हमें बताता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए बाबा कहते दो शब्द हमेशा याद रखो, कौन सा, स्वमान, एक तो खुद सदा स्वमान में रहो। अगर आप स्वमान में रहेंगे, आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे मान शान प्राप्ति की, तो आपके अंदर वेस्ट थॉट भी नहीं चलेंगे, प्रश्न के नहीं चलाना है, लेकिन क्या करना है, फुल स्टॉप, बीती बातों को या जो भी होता है उसको फुल स्टॉप लगाना हमको सीखना है। तो स्वमान में रहना है तो बार बार सोचते नहीं रहना है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं सदर्शन चक्रधारी हूँ, सोचने में ही रह गए तो स्वरूप नहीं बन पाते। तो सोचता स्वरूप नहीं बनना है हमको, क्या बनना है, स्मृति स्वरूप। तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तो उसके लिए जितना हम स्वमान में रहेंगे तो हम दूसरों को भी सम्मान दे सकेंगे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे आंख में बिंदी होती है ना, स्थूल आंख में, आंख में बिंदी होती है बीच में, वो अगर नहीं हो तो क्या होगा, आंख से देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। ऐसे ही आपको अपने इन नैनों में मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी की स्मृति को ऐसे समा लेना है, मेरी वृत्ति में आ जाए बस मैं हूं ही आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। जैसे वो बिंदी नैनों में समाई हुई है, स्थूल आंखों की बिंदी, ऐसे मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी की स्मृति इन नैनों में वृत्ति में समा जाए। और जब वो वृत्ति में समा जाएगी तो भले कोई कैसा भी है, क्या भी करता है, कुछ भी करता है, उल्टा सीधा आपके साथ कैसा भी चलता है, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखेंगे, शुभ भावना रखेंगे, शुभ कामना उसके प्रति रहेगी। और जो भी कुछ हो जाता है कर्म में आने के बाद, जो कुछ भी हुआ, किसी ने किया या आपके द्वारा जो कुछ हो गया, उसको फुल स्टॉप बिंदी लगा के आगे बढ़ते जाओ। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म में अंदर जाके चेक करना और इसका बहुत अभ्यास करना कि नैनों में ही आप किसी को भी देख रहे बस आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शरीर दिखाई दे रहा है पर शरीर को नहीं देख रहे, उसके गुण अवगुण दिखाई दे रहे लेकिन आप आत्मा बिंदी को ही देख रहे, आपको बाबा बिंदी ही दिखाई दे रहा। और आपकी हरेक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है, ज्ञानी है अज्ञानी है, सबको आपको किस भाव से देखना है, शुभ भाव से। शुभ भाव से देखो, शुभ भाव से उसको सुनो। वो कुछ भी सुना रहा है, आपके अंदर पूर्वाग्रह है, पहले से उसके प्रति कोई भाव भावना बैठी हुई है, कोई दृष्टिकोण है, उसके प्रति कोई दृष्टि है अंदर में, घृणा नफरत वैर भाव द्वेष कोई भी प्रकार की, उस दृष्टि को हटाकर शुभ भाव से उसको सुनो, शुभ भाव से देखो, शुभ भाव से सोचो, शुभ भाव से उसके साथ संबंध संपर्क में आओ, व्यवहार में आओ, और शुभ भावना से उसको सहयोग दो। ये जब हम करेंगे तो हम सबको सम्मान दे सकते हैं, और खुद भी अपने आप को भी सम्मान देना है ना, तो अपने आप को सम्मान देना माना खुद को, जो बाबा हमको सम्मान देते हैं स्वमान के रूप में, उसके स्वरूप में स्थित करना, वो है खुद को सम्मान देना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें बेहद का वैरागी बनना मुश्किल नहीं लगेगा, वैराग वृत्ति हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती जाएगी। और जब वैराग वृत्ति होगी तो धीरे धीरे आप उपराम वृत्ति को प्राप्त करेंगे, जितनी वैराग वृत्ति उतना ही उपराम वृत्ति। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा लास्ट लास्ट में बाबा कितने उपराम होते चले गए, बच्चे बैठे हैं सुना रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है बाबा सुन रहे हैं, लेकिन बाबा सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे, यहाँ है लेकिन यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं है, वतन में है, देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, ऐसे ब्रह्मा बाप के समान। धीरे धीरे हमारी स्थिति उपराम वृत्ति की बनती, सब बातों से उपराम, ऐसे नहीं काम काज नहीं करेंगे, अंदर की स्थिति उपराम, माना हमारा राग निकल गया ना, सबसे वैराग आ गया, सारी दुनिया हमको लगेगी कब्रिस्तान है, विनाश का निश्चय पक्का है, सारी दुनिया कब्रिस्तान है, हमारे सामने नई दुनिया दिखाई देगी और उसके लायक हम अपने आप को बनाते जाए। एक बाबा और आत्मा ही बुद्धि में नैनों में समा गई तो यहां से उपराम, और जितना उपराम, क्योंकि आप देखेंगे अगर उपराम नहीं है तो कोई भी बात जो दिल में लग जाती है ना, चाहे अच्छी चाहे बुरी, दिल में लग जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है। बुरी बात को लगा के बैठ जाएंगे तो उसको निकालने के पुरुषार्थ में मेहनत करते रहेंगे, और अगर अच्छी बात दिल में लगा ली, जैसे हमने आपको कहा आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, ये दिल में लग गई, वृत्ति में समा गई, तो आपका पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा? उपराम वृत्ति के साथ साथ बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सब तरफ से बुद्धि निकलेगी। बाबा ने अंतिम श्वास तक ब्रह्मा बाबा ने कर्तव्य किया, सुबह मुरली नहीं चलाई, रात को बच्चों को बुलाया, दिन भर में लेटर लिखे, सारा अपना कारोबार पूरा किया, ऐसे नहीं काम छोड़ दिया उपराम बन गया। तो हमें भी कारोबार नहीं छोड़ना है, सब कुछ करते हुए उपराम, वो स्थिति जब हम अपनी लाएंगे तो अंदर में बस एक बाबा, जैसे हमने देखा दादी गुलजार जी को, 11 तारीख को दादी गुलजार जी का व्यक्ति दिवस आ रहा है। दादी 3 साल तक तपस्या की, कितनी ऊंची स्थिति में थी, एक तरफ हिसाब किताब चुकाया, दूसरी तरफ तपस्या करके अपनी स्थिति को और ऊंचा कर्मातीत बनाया। तो हमें सब कुछ करते ऐसी उपराम स्थिति लानी है, और मेरा तो एक बाबा, जब एक बाबा बुद्धि में हमारे जीवन का आधार हो जाएगा, एक बल एक भरोसा और दूसरा कोई आधार नहीं, तो मेरी स्थिति ऐसी बन जाएगी जो मुझे कोई भी समस्या आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, एक मुरली में बाबा ने कहा था एक हिमालय तो क्या, एक हिमालय कितना बड़ा, हिमालय पहाड़ बड़ा है ना, लेकिन ऐसी 100 गुना ज्यादा बड़ी तन की परिस्थिति आ जाए, मन की परिस्थिति आ जाए, प्रकृति द्वारा परिस्थिति आ जाए, कोई व्यक्ति द्वारा परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन स्वस्थिति परिस्थिति से भी ऊंची है। अगर आप अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंचा बना लेते हैं, एक बाबा आपका आधार है, सब तरफ से बुद्धि निकली हुई है, बेहद की वैराग वृत्ति है, उपराम स्थिति है, अंदर में एक बाबा ही केवल आधार, कोई देहधारी आधार नहीं, कोई साधन आधार नहीं, कोई सुविधा आधार नहीं, किसी चीज का आधार नहीं, बाबा और बाबा से योग और उसके द्वारा प्राप्त स्थिति द्वारा शक्तियां गुणों का बाबा का सहयोग। तो ऐसी स्थिति से जब आप दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो आपकी आवाज बाबा तक पहुंचेगी और बाबा से आपको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। पर ये सौदा दिल का सौदा है, सिर्फ मुख से कहने का सौदा नहीं। जब आप दिल से बाबा को अपना बना लेंगे और मेरा बाबा बस एक बाबा, ऐसी आपकी ऊंची स्थिति आप बना ले, ये है तीव्र पुरुषार्थ की स्टेप्स। इनको जैसे जैसे आप करते जाएंगे समय अनुसार, ये एक दिन में बनने वाली स्थिति नहीं है, लगातार आपको बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा, लंबे समय से, चाहे विघ्न कुछ भी आए, विघ्न तो आएंगे, आपने सोचा और बन गए ऐसा नहीं है, बातें तो हजारों आएंगी, लेकिन उनको भी हमें अपनी स्वस्थिति से जीतना होगा और अपनी स्थिति को कर्मातीत बनाना है ना। लेकिन कर्मातीत स्थिति तक ला करके केवल खुद का ही पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें बाबा कहता आप वर्ल्ड सर्वेंट हो, वर्ल्ड सर्वेंट हो, विश्व का कल्याण करना है। जब आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, इतने खजाने आप भरपूर कर लो, तो आपका अखंड भंडार चलता रहे, आप दाता बनकर के सबको देते रहो, हर संकल्प से, श्वास से, गुणों से, शक्तियों से, हर चीज से, संपर्क से, संबंध से, बाबा से प्राप्त खजाने को शुभ भावना से सबको लुटाते रहो, अखंड भंडारा आपका चलता रहे और सबको खुशी देने का, दिल खुश मिठाई देकर के सबको खिलाकर सबकी खातिरी आप बच्चों को करनी। जब ऐसी स्थिति होगी तो कोई भी आपके सामने आए, आप सदा खुश है, आपकी स्थिति सदा मुस्कुराने वाली है, तो आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सबकी सेवा करेगा, आपके वाइब्रेशन सेवा करेंगे, आपका जीवन, आपके गुण, आपकी शक्तियां, आपका कर्म, जिसको बाबा कहते हैं आपका चेहरा और चलन दोनों से सेवा होगी। ऐसी स्थिति बनाना माना ही ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। तो ऐसी स्थिति बनाना ही है, करना ही है, बनना ही है, ये अंदर में दृढ़ संकल्प जब तक नहीं, तो दृढ़ता के बिना सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज आप सभी दृढ़ संकल्प करें और ऐसी स्थिति बनाएं, उसके लिए समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करें। ओम शांति।
लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम है। मेरे